الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. یہ کتنا خوبصورت اعلان ہے، دیکھیں قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے نا اپنی قبروں سے تو اتنی گھبراہٹ ہوگی، اندازہ کیجئے. ہم ذرا سی بھی کیا اس ہو، ذرا کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہی دیکھ لیں تو وہاں پہ ہماری ہمیں گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی. قیامت کا دن اتنا ہولناک ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ہر طرف افراتفری کا عالم. اب انسان کو یہ پتا ہے کہ یہ میرا دن فیصلے کا آ گیا. انسان پریشان ہے، انسان اب اس پریشانی کے اندر، گھبراہٹ کے اندر لوگ بھاگ رہے ہیں ایک طرف، کسی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہیں. ایسے کے اندر، ایسے وقت کے اندر ظاہر ہے سب کو گھبراہٹ ہوگی، لیکن پھر ایک اعلان ہوگا. یہ اعلان کیا ہوگا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، تم پر آج کے دن کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. نہ خوف ہے اور نہ غم ہے تمہیں آج کے دن. خوف کس کا ہوتا ہے؟ جو وقت آنے والا ہوتا ہے، مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں نا، انگزائٹی ہوتی ہے مستقبل کی. اور غم کس کا ہوتا ہے؟ جو پہلے گزر چکا، اس کا غم کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ اس کا غم ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب منادی قیامت کے دن یہ ندا کرے گا، اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، تو تمام لوگ اپنے سر اٹھا کر کہیں گے ہم اللہ کے بندے ہیں. اب کتنا شوق ہو جائے گا سب کو اللہ کے بندے بننے کا، دنیا میں تو بن کے رہے نہیں، لیکن اس دن کہیں گے ہم تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ اکبر. پھر دوسری ندا آئے گی اور کہا جائے گا، یہ جو آگے آ رہا ہے، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور مسلم بن کے رہے، اطاعت گزار بن کے رہے، تو کفار اپنے سروں کو جھکا لیں گے اور جو توحید والے ہیں ان کے سر اٹھے رہیں گے. پھر تیسری منادی آئے گی اور کہا جائے گا، جو لوگ ایمان لائے اور متقی رہے، تو اب وہ لوگ جو گناہ کرنے والے تھے اور خاص طور پہ کبیرہ گناہ کرنے والے، وہ اپنے سروں کو جھکا لیں گے اور صرف متقین جو ہوں گے وہ اپنے سروں کو اٹھائے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان سے خوف اور غم سب دور کر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو خوف میں نہیں رکھتا. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو دوست ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. تو اس وقت جب یہ ندا آئے گی تو کتنا انسان کو تسلی ہو جائے گی کہ آج اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے کہ میرے بندوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے بندے بن کے رہنا ضروری ہے نا. جب انسان اپنے من کا بندہ بنتا ہے، اپنی مرضی کا بندہ بنتا ہے کہ میں نے وہ کرنا ہے جو میرا دل کرتا ہے، مجھے یہ پسند نہیں آتا اور یہ پسند آتا ہے، میں پک اینڈ چوز کرنے لگتی ہوں، تو پھر اللہ کی بندگی تو نہ ہوئی نا. اللہ کی بندگی تو ٹوٹل بندگی ہے، ٹوٹل سبمیشن ہے. کیونکہ آگے کیا ہے، کون سے وہ اللہ کے بندے، یا عباد میں کون ہے؟ الذین، وہ اللہ کے بندے، جو آمنو بی آیاتینا، جو ہماری آیات پر ایمان لے کر آئے. دیکھیں ایمان لانا کا مطلب ہوتا ہے مان جانا نا. ہم کہتے تو سارے ہی ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی آیات کو مانتے ہیں، لیکن جب ہم استغفر اللہ بعض دفعہ اللہ کی آیات کے اندر ہی مین میخے نکالنے لگے، یا اللہ کی آیات کو ہی کچھ نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ تو میں نہیں یہ کر سکتی بھائی، تو کیا ماننا ہوا؟ ماننا تو دل سے بھی ہے، عمل سے بھی اس کو کر کے دکھانا، وہ ماننا ہوتا ہے. آپ نے مان لیا مثلا کہ
कि आज जो उन्होंने न्यूज़ दी है कि अल्लाह ना करे कि आज बड़ा तूफान आने वाला है, तो आपने जब मान लिया ये, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? अब वो कह रहे हैं आपको इवैक्यूएट करते हैं, या आप वो कह रहे हैं कि बहुत तूफान आने वाला है, इतने दिन तक हर चीज बंद हो जाएगी, तो आप भागेंगे ग्रोसरी स्टोर पर पहले खाने पीने और पानी का इंतजाम करें? क्यों? इसलिए कि आपने इसकी बात मान ली थी ना, आपको यकीन था कि इसकी बात सच्ची है। जो अल्लाह की आयात को मान लेता है ना, उसके बाद वो ऐसे नहीं बैठ जाता, फिर वो उसके ऊपर अमल करता है। अब अल्लाह ताला की आयात में कई चीजों को छोड़ने का हुक्म है, कई कुछ करने का हुक्म है। ये मानना क्या हुआ कि हमने मान लिया और बस ठीक है, जुबानी मान लिया, जुबानी कह दिया मान लिया, तो इसे मानना हो गया? नहीं। एक औरत कहती है कि मैंने तुझे अपना शौहर मान लिया, तो उसके बाद क्या कुछ हकूक हैं उस शौहर के इसके ऊपर, या कुछ भी नहीं, या वो और आदमियों के साथ चली जाए? नहीं, जब मान लिया कि ये मेरा शौहर है, तो बस उसके साथ ही उसके ताल्लुक होगा। अल्लाह की आयात को जो मानते हैं, फिर वो अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, इन आयात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। और दूसरी बात, अल्लाह की आयात को मानना ये नहीं है कि कुरान करीम तो वहां पढ़ा हुआ है, आयात वहां पढ़ी हुई है, और मैंने मान लिया। किस चीज को मानना है? आप बैठे हुए कहते जाए मैंने जी मान लिया। क्या मान लिया? आपको पता भी है कि इन आयात में क्या है? वो चीज होती है ना जिसको हम मानते हैं। अब वो क्या है इसकी समझ ही नहीं, इसको कभी पढ़ा ही नहीं, आयात को जानते ही नहीं। अमल करना तो बाद में आता है। जब पता ही नहीं है क्या, तो मानना किस चीज का है? फिर तो सिर्फ मुंह की बातें हैं। तो लिहाजा जो मान लेना ना, बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे ही कोई तोते की तरह मान लेना नहीं होता कि बस एक चीज रट ली हुई है और कह दिया मैंने मान लिया मान लिया। अब चूंकि मुसलमान है तो कह सकते नहीं है कि नहीं माना, वैसे कुरान की आयतों के ऊपर मजाक भी उड़ा लेते हैं, और उनको मौलवियों की बातें कह के भी रद्द कर देते हैं, और उनको ऊपर कई उंगली भी उठाते हैं, कई बातों में ऑब्जेक्शन भी करते हैं, ये तो नहीं सही, ये तो कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, लो फिर हम क्या करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है, आखिर हमने दुनिया में भी तो रहना है। सब ऑब्जेक्शन हैं, फिर मानना क्या हुआ? तो अल्लदीन आमनू भी आयातिना व कानू मुस्लिमीन, और वो थे मुसलमान। मुस्लिम का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान नाम के थे, है ना? आज खैर लफ्ज भी आ गया, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। मुस्लिम तो होता ही प्रैक्टिसिंग है, प्रैक्टिस के बगैर तो मुस्लिम होता ही नहीं है। इन शायद कुछ लोग समझते हैं कि मुस्लिम एक वर्ड है सिर्फ, जो किसी का नाम रख लिया जाता है। नहीं जी, मुस्लिम का मतलब होता है फरमा बरदार, फरमा बरदार। इस्लाम सबमिशन का नाम है, और मुस्लिम वो होता है जो सबमिट कर देता है, झुक जाता है, मन चाही नहीं रब चाही जिंदगी गुजारता है, वो मुस्लिम होता है। और हम अपने आप को मुस्लिम मुस्लिम कहते रहे, लेकिन मर्जियां हमने अपनी करनी है, फरमा बरदारी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम फरमाबरदारी को समझते ही नहीं, क्योंकि फिर हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे ना अगर फरमाबरदार हो गए तो। और पूरी फरमाबरदारी तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि उससे तो बिल्कुल ही पता नहीं आप क्या बन जाएंगे। पूरी नहीं, थोड़ी, पार्शली, पार्ट टाइम मुस्लिम। पार्ट टाइम मुस्लिम क्या होता है? पार्ट टाइम मुस्लिम है जी, और हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तो नहीं है, फिलहाल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। पता नहीं ये टर्म्स खुद ही से बना ली। अल्लाह के यहाँ तो सिर्फ मुस्लिम है, यहाँ तो कोई मुस्लिम है या नहीं है, और मुस्लिम वो है जो फरमा बरदार है। तो अगर फरमा बरदारी ही नहीं, तो मुस्लिम नहीं हुए। और जहां पे ये देखो, मुस्लिम किसे? इस्लाम से। एक होता है ईमान और एक होता है इस्लाम। ईमान और इस्लाम अगर अकेले आए, तो फिर तो इस्लाम के अंदर ईमान भी है, और ईमान आ जाए तो ईमान के अंदर इस्लाम भी है। लेकिन अगर अलग अलग आए, जैसे यहां पे आए, पहले आमन हुए फिर मुस्लिम है, ईमान है फिर इस्लाम है, तो ईमान क्या होता है? अंदर ईमान, अंदर होता है, अंदर का यकीन। और इस्लाम क्या होता है? जो जाहिर में इताअत करना, जो आप बाहर से इताअत के काम करते हैं, अमल करते हैं, उसको फरमाबरदारी के काम करते हैं, उसको इस्लाम कहेंगे। फिर आप जाहिरी अहकामात की पाबंदी। अब ये देख लें कि यहाँ पे अंदर का भी बात आ गई, बाहर की भी बात आ गई, और हम क्या कहते हैं? हमारे दिल इतने पाक हैं, आपको क्या पता, आप बस बाहर से देखते हैं, तो जाहिर में अगर मैं ऐसी लगती हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा दिल तो बहुत अच्छा है, मेरा दिल तो बहुत नेक है। तो देखिए यहां पे दोनों चीजें ही आ गई, आपका दिल भी नेक होना चाहिए और आप बाहर से भी नेक होने चाहिए, बाहर से भी अल्लाह के फरमाबरदार पता चलना चाहिए। इनमें से एक चीज भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। ऐसे लोगों के लिए फिर ऐलान होगा, उदखुलुल जन्नत अंतुम व अजवाजुकुम तुहबरून, के दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम भी और तुम्हारी जोड़े भी, तुम्हारी बीवियां भी। बीवियां भी मुराद है, और वैसे भी जोड़े या वैसे भी साथी, साथी के लिए भी आते हैं जिनके साथ मिलके आप रहते हैं, तो यानी दोस्त, अहबाब, साथी, औलाद सब भी इसके अंदर आ गए, लेकिन खास तौर पे बीवियां जो भी फरमा बरदार थी। और तहबरून, तहबरून हिबर से है, हा बा रो, और इसका मतलब क्या होता है? खुशी, खुश होना। और खुशी के अंदर हबूर कहते हैं शिद्दते सुरूर, बहुत ज्यादा खुशी, ऐसी खुशी जिसको कोई चीज खराब ना कर सके। हबूर, लोग नाम भी पूछते हैं ना कि कौन सा नाम अच्छा है। देखिए ये कितने प्यारे प्यारे नाम आपको कुरान से ही मिल जाते हैं। तो तौहबारून में यानी आपको पता चलता है कि खुशी खुशी होगी और खुश रखा जाएगा उनको वहां पे। ऐसी ऐसी चीजें होंगी, आप फिक्र ना करें, जो लोग पूछ रहे हैं ना कि बोर तो नहीं होंगे, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया तुम्हें खुश रखा जाएगा। आपको बता दिया जाए कि आप वहां पे आए, आपको ऐसा खुशी का सामान है वहां पे, आप खुश ही खुश रहेंगे, हम मेक श्योर करेंगे आप बोर ना हो। तो आप कितने खुश होते हैं। अल्लाह ताला जब खुशी का इंतजाम कर दे तो फिर इंसान कैसे सोच सकता है कि वो बोर हो जाएगा। इतना खुशी का सामान होगा जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना कि तुम्हारे लिए वो होगा, आगे आ रहा है ना, वो होगा जो किसी आंख ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल के ऊपर उसका गुजर हुआ। तो हम कैसे जान सकते हैं क्या क्या सामान होगा? ना मुझे पता है ना आपको, हम सोच ही नहीं सकते। जो जी भी जन्नत की नेमतें हैं ना जो कुरान करीम में बताई गई हैं, वो सिर्फ हमें एक यानी कोई एक सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताई गई है। हम चूंकि उन चीजों का अंदाजा ही नहीं कर सकते। जब कह दिया गया ना दिल पे भी उसका गुजर, देखना तो दूर की बात, सुनना चलो कोई चीज सुनी ली होगी, नहीं देखी होगी तो सुनी भी नहीं है। अब अच्छा दिल में ही ख्याल आता, हम दिल में सोचते रहे, बहुत दफा हम बड़े खूबसूरत सीन्स का, जन्नत ऐसी होगी ऐसी होगी, शायद ऐसी होगी, आंखें बंद करते हैं सोचते हैं जन्नत तो पता नहीं ऐसी होगी, कोई भी हमने जो कुछ हमारे दिमाग बना सकता है हम उसको सोचने लगते हैं, वो वैसी भी नहीं, क्योंकि दिल में भी उसका ख्याल नहीं गुजरा। ऐसी ऐसी वहां पे चीजें, तो फिर बस हम यही कह सकते हैं कि वो है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी एक मखलूक है जन्नत, ऐसी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और वो उसमें तहबरून खुश रखे जाएंगे। और इसका मतलब तहबर का मतलब मुजयन करना भी है, चमका देना, यानी वहां इतनी खुशी भी होगी, चमका दिया जाएगा, चेहरे भी चमक रहे होंगे, वजूहु यौमा इज़ मुस्फिरा दाहिका तो मुस्तबशिरा, उस दिन चेहरे भी रोशन होंगे, खुश होंगे, खिलखिला रहे होंगे। तो तरोताजा कहीं पे आता है, तरोताजा होंगे चेहरे। तो इसलिए हम इस चीज की तो फिक्र ना करेंगे वहां पे कोई बोरियत है, वहां पे कोई खुशी अधूरी नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा, कोई उदासी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, प्रॉब्लम नाम की चीज वहां पे है नहीं, और खुशी बढ़ती ही जाएगी। ऐसा नहीं हुआ है कभी उकता जाए इंसान के, ओ अच्छा मेरे पास तो सारी चीजें आ गई अब क्या रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं जब सब कुछ ही मिल जाएगा तो फिर इंसान तो उकता ही जाएगा, यानी इसका मतलब है कि कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो फिर यहाँ पे मारे मारे क्यों भागते हैं, फिर यहाँ पे भी आराम से बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिल गया तो फिर तो उकता जाएंगे ना, नहीं यहाँ पे भाग जाने। देखो शैतान कैसी कैसी दिमाग में चीजें डालता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को फरमा बरदारी में, अल्लाह की फरमा बरदारी में लगाया, उसकी आयात पे ईमान रखा, तो आज देखो उनके लिए कैसे ऐलान हो रहे हैं। युतआफ़ु अलैहिम बिसहाफ़ मिन ज़हबिन व अकवाब, उनके पास फिराए जाएंगे, गर्दिश कराए जाएंगे, यानी कोई गुलाम होंगे जो इनके आगे चीजों को लेके फिराएंगे। कहते कुर्तुबी ने लिखा है अपनी तफसीर में कि अदना दर्जे का जन्नती भी जो होगा ना, अदना दर्जे का, उसके भी 70,000 गुलाम होंगे, 70,000 सोने के प्याले लेके वो घूमेंगे, और उनमें हर एक में अलग अलग जायके के मशरूब होंगे। और आला जन्नती के तो पास 7 लाख गुलाम, 7 लाख सोने के प्याले गर्दिश कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। यानी ये नौजवान गुलाम होंगे जो मोतियों की तरह होंगे, वो भागते फिर रहे होंगे लोगों के आगे, जैसे ट्रे करते हैं, चक्कर लगा रहे होंगे, एक आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, और बड़े बड़े थाल हैं, तश्तरियां उनमें खाने हैं और प्याले हैं, और उनमें सर्व किया जा रहा है। जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप रेस्टोरेंट का तो भी ले भी नहीं सकते आप, लेकिन फिर भी यानी आपको उठ के नहीं उसमें जाना पड़ता, बैठे बैठे ही आपके सामने आती है, लेकिन वो भी इतनी देर में आती है कि आपकी भूख खत्म हो जाए, और फिर वो भी बार दफा आपके टेस्ट का नहीं होता। वहां पे ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि इंसान, मिसाल के तौर पे ये भी बताया जाता है कि इंसान अपने मुंह में एक फल डालेगा, और मिसाल के तौर पे अंगूर डाला, तो अब दिल किया कि हाँ ये अनार होता ना तो कितना अच्छा होता, तो उसका जायका मुंह में ही चेंज हो जाएगा, अनार बन जाएगा। फिर सेम में आता है, हाँ देखो सेब होता तो कितना अच्छा होता, उसके मुंह में ही वो सेब बन जाएगा, सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह जो बर्तन होंगे वो उसके सामने आएंगे, और फिर उसके बाद जब वो उनमें अपने यानी हाजत उसकी पूरी हो जाएगी, जो भी जितना पीना चाहता है पी लेगा, तो वो बर्तन वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, सुभान अल्लाह। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जो पहला गुरु दाखिल होगा वो चौदहवीं रात के चांद की तरह होगा, यानी उनकी सूरतें ऐसी चमक रहे होंगे, उनके चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आते हैं ना तहबर, उन्होंने आपको बताया इसमें चमक का भी माना है, उनके चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे, ना वहां पे थूक होगा, ना नाक साफ करेंगे, ना वो जन्नत में रफा हाजत करेंगे, उनके बर्तन और कंघियां सोने और चांदी की होंगी, उनकी अंगीठियों में ऊद होगा, ऊद सुलगती हुई, यानी इसका मतलब एयर फ्रेशनर भी होगा, वहां पे बदबू भी नहीं, और इनका पसीना मुश्क की तरह होगा, पसीना भी ऐसा आएगा कि पसीने से भी बदबू नहीं आएगी, खुशबू खुशबू होगी, पसीना में खुशबू होगी, और पेशाब पखाना तो होगा ही, सुभान अल्लाह। और इसी वजह से दुनिया के अंदर ये सोने चांदी के बर्तनों से मना किया गया, क्योंकि मोमिनों के लिए आखरत में होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये चीजें दुनिया में इनके लिए हैं और हमारे लिए आखरत में, हमारे लिए आखरत में होंगी, तो सोने के वहां पे होंगे, दुनिया में ये सोने से परहेज करते थे ना, सोने और इसके जेवरात से, जन्नती जो आदमी थे, और फिर सबको ही मना है सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पीना, लेकिन वहां पे सोने और चांदी के बर्तनों में उनको खिलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। वफीहा मा तश्तहीही अनफुस, और उनके लिए वहां पे वो सब कुछ होगा जो उनके नफ्स तमन्ना करेंगे। देखें नफ्स आज तमन्ना करता है, लेकिन आज जो इस नफ्स की तमन्नाओं को, जो अल्लाह की नाफरमानी की है, उन ख्वाहिशात को नफ्स की दबा देता है, रोक लेता है अपने आप को, अल्लाह ताला वहां पे उसके फिर नफ्स की सारी ख्वाहिशात पूरी कर दे, क्योंकि इसने दुनिया में अपने नफ्स को रोके रखा ना। वमन खाफ मकाम रब्बी वनह नफ्स अनिल हवा, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, क्योंकि नफ्स बस नफ्स कहता है खाओ पियो मजा करो, नफ्स को ना दिल नहीं चाहता कोई मेहनत करने का, नफ्स को दिल नहीं चाहता कि वो कोई ऐसी चीजें, कोई पाबंदी की जिंदगी गुजारे, नफ्स चाहता है बस आजाद कर दो मुझे, मैं जो मर्जी करूं जैसे मर्जी चलूं, कोई पूछने वाला ना हो, नफ्स ये चाहता है सोते रहो खाते रहो पीते रहो और मौज मस्ती करो, ये जिंदगी एक दफा ही मिलनी है, नफ्स ये करता है। लेकिन जब इंसान इस नफ्स की तमन्नाओं को अल्लाह की खातिर दबा देता है कि नहीं इन पे नहीं चलना, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए वहां पर फिर वो सब कुछ दे देगा जो ये नफ्स तमन्ना करेगा। वतलज्जुल आयुन, और आंखें लज्जत पाएंगी वहां पे। देखें इंसान का हर उज्व ना डिफरेंट चीजों से लजत पाता है। जैसे जुबान है वो अच्छे खाने से लजत पाती है, नाक है तो वो अच्छी खुशबू से लजत पाती है, कान है तो वो किसी अच्छी बात से लजत पाते हैं, लेकिन एक है आंखों की लजत, आंखें खूबसूरत मनाजिर से लजत पाती हैं। आप देख लें कितना हम पैसा स्पेंड करते हैं वेकेशन पे जाने के लिए, किसी सीनिक जगह को हम ढूंढते हैं कि वहां पे जाएं, कोई हिल स्टेशन, कोई ऐसी जगह, बस वो बड़ी कहते हैं खूबसूरत है तो कहते हैं वहां पे चलो। क्यों, कौन सी चीज लज्जत पाती है? आंखें। हम घरों में खिड़कियां क्यों बनाते हैं? इनसे बाहर देखें, आंखें लज्जत पाएं। हमारे पूरे जिस्म में ना सबसे ज्यादा जिसकी लज्जत के लिए हम, अगर आप नोट करें तो जिसका ख्याल करते हैं ना, वो आंखों की लज्जत है। आंखों से खूबसूरत मंजर देखना चाहते हैं, आंखों से खूबसूरत चेहरा देखना चाहते हैं, आंखों से हम देखते हैं अपने आप को भी शीशे में अच्छे लगना चाहते हैं, सारी आंखों की लज्जत ही तो है। तो आंखों की लज्जत का अल्लाह ताला ने वहां पे सामान किया हुआ है, सुभान अल्लाह। और आंखों की लज्जत में जहां जन्नत की सारी नेमतें आंखों की लज्जत का सामान होंगे, यानी इवन खाने भी इतने खूबसूरत से डेकोरेट किए होंगे, ऐसे ही नहीं दे दिए जाएंगे जैसे तैसे मर्जी दे दो, इतने खूबसूरत के कुछ मंजर होंगे खाने भी और जितने मनाजिर वहां के, लेकिन सबसे ज्यादा जो लज्जत होगी वो अल्लाह ताला के दीदार से इन आंखों को होगी। ये नेमत वो होगी कि इसके सारे आगे सारी जन्नत की नेमतें इंसान को कम लगेंगी और वो कहेगा कि अल्लाह तेरा दीदार होता रहे। ये है पीक आंखों की लज्जत की। तो जब दुनिया के अंदर आंखें हराम से लज्जत पाना चाहें तो उनको याद कराएं कि एक दिन इन आंखों से अल्लाह का दीदार तभी हो सकता है जब आज अपनी आंखों को महफूज रखेंगे, जब आज अपने नफ्स की जो ये ख्वाहिश उठती है कि अच्छा इस तरफ को देखा जाए, ये मंजर देखा जाए, ये सीन देखा जाए, ये पिक्चर देखी जाए, ये वीडियो देखी जाए, और वो हराम है, वो गंदगी है, वो फहाशी है, तो फिर याद कर लें कि ये आंखें अल्लाह ताला को देखने के काबिल होनी चाहिए। इन आंखों ने उस रब को देखना है, इनको मैंने बचा के रखना हर गैर महरम पे नजर डालने से और हर ऐसी चीज पे नजर डालने से जो बुराई की है। इतनी प्यारी दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका लज्जत नजरी ला वजही का व शौकी ला लिकाइक, अल्लाह मैं तेरे चेहरे को देखने की लज्जत का सवाल करता हूँ और तेरी मुलाकात के शौक का, तो फिर इस जिंदगी को ऐसे गुजारे कि वाकई अल्लाह ताला के दीदार के लिए अपने आप को काबिल बनाए। ये नजर, ये जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, ये बस अल्लाह की मुलाकात के शौक में ही गुजर जाए, कि मुझे इतना शौक हो कि मेरे रब से मुलाकात होनी, ऐसी जिंदगी को बचा बचा के रख, बच बच के चले बुराइयों से, कि वाकई जब किसी चीज का शौक लग जाता है ना तो फिर इंसान उस शौक की खातिर कुछ भी करता है। जिसको अल्लाह से मुलाकात का शौक लग जाए, कौन सा वो दिन होगा मेरे रब के साथ मेरी मुलाकात हो जाए, वो कौन सी वो घड़ी होगी कि मेरी नजरें उसका दीदार करेंगी। तो क्या चीजें हैं ये दुनिया की, फिर तो कोई चीज से भी भाग रहना कोई ऐसा मुश्किल काम तो नहीं। हम शौक की खातिर क्या क्या नहीं करते, किसी की मुलाकात का शौक होता है तो हम लंबे लंबे सफर भी करते हैं उनसे मिलने के लिए। सोचें कि वो क्या दिन होगा जब अल्लाह ताला फरमा दे या इबादी ला खौफुन अलैकुम अलयौम वला अंतुम तहज़नून, या कितनी बड़ी खुशखबरी होगी एक इंसान के लिए कि वो उठा है और घबराहट के अंदर है और परेशानी के अंदर है और एक नफसा नफसी का आलम अफरा तफरी मची हुई है उसके इर्द गिर्द, पता नहीं अब होना क्या है मेरा, अरे मेरा बनेगा क्या, उस वक्त ऐसी खुशखबरी आ जाए, सुभान अल्लाह। देखिए ना, अब मिसाल के तौर पे कोई इंसान किसी जगह जाता है तो वो परेशान होता है, सफर भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब आगे आपके लिए आपके कोई प्यारे खड़े में आपको वेलकम करने के लिए वहां पे एयरपोर्ट पे फूल लेके खड़े में, हार पहनाने को खड़े में, और आपके बहुत प्यारे हैं वो, तो सारे सफर की थकान भी भूल जाती है, पीछे के सारे गम भी भूल जाते हैं, हम कहाँ से आए, किनको छोड़ के आए, वो सब भूल जाता है। कयामत के दिन भी जब वो घबराहट से उठेंगे, कितना कब्र और मौत और जिंदगी में पता नहीं कितनी परेशानियां काटी, लेकिन अब जब उठे और जब ये ऐलान मिल गया ना, और फरिश्ते लेने आएंगे, फरिश्ते वहां पे हाथों हाथ ले रहे होंगे, इस्तकबाल करेंगे, और ये निदा आ जाएगी, अनाउंसमेंट ये हो रही होगी, तो उनकी खुशी का आलम क्या होगा जिस रब की खातिर अपनी सारी जिंदगी गुजारी।